परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम की पुस्तक उसके दूसरे शमूएल नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले दिनों में हमने देखा था कि उस काम से जो दाऊद ने बतशेबा के साथ किया था, यहोवा उससे क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और उसने दाऊद को एक कहानी सुनाई जिसमें एक धनवान ने किसी गरीब का शोषण किया था। दाऊद क्रोधित हुआ और उसने नातान से कहा, जिस मनुष्य ने ऐसा किया है वह प्राण दंड के योग्य है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। हित्ती उरियाह को तो तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। तूने मुझे तुच्छ जानकर उरियाह हित्ती की पत्नी को अपनी कर लिया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि नातान ने उसके पश्चाताप करने पर कहा कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तूने यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा बेटा जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। मित्रों, हम देखते हैं कि दाऊद ने उस बालक के लिए प्रार्थना किया और उपवास तो किया परंतु वह बचा नहीं, वह सातवें दिन मर गया। और यह समाचार सुनकर दाऊद उठा और नहा धोकर तेल लगाया और वस्त्र बदलकर परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत की और भोजन किया। मेरे मित्रों, उसके कर्मचारियों ने इस विचित्र व्यवहार का प्रश्न किया तो उसने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु वह मर गया है। फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। तब हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद बतशेबा के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दाऊद ने सुलेमान रखा और नाता ने उसे यदियाह नाम दिया। परमेश्वर इन सब बातों के उपरांत भी दाऊद के राज्य को बढ़ा रहा था और योआब ने राजनगर को जीत लिया था और दाऊद से कहा कि वह रब्बा नगर को जीतकर विजय का सेहरा अपने सिर बंधाए। अतः दाऊद ने वह नगर जीत लिया और राजा का मुकुट अपने सिर पर रखा। तब हम आज अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय 13 और 14 को। यहाँ पर हम पाते हैं कि दाऊद के पुत्रों अननोन और अबशालोम के पाप एक पुरानी कहावत है, यदि आप नाचेंगे तो सारंगी बजाने वाले को वेतन देना होगा, यदि आप पाप करेंगे तो आपको परिणाम भोगना होगा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं गलातियों की पत्री अध्याय 6 उसके 7 पद में परमेश्वर स्पष्ट कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप पाप करके बच नहीं सकते हैं, चाहे आप कोई भी क्यों न हो। गलतियों में आगे हम पढ़ते हैं अध्याय 6 उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसमें दो राय नहीं कि दाऊद ने शरीर के लिए बोया। आप पल भर के लिए भी यह न सोचें कि वह मधुर शब्दों में छोटा सा पश्चाताप उच्चारित करेगा और बच जाएगा। मैंने लोगों को कहते सुना है, मसीह का लहू पाप को ढांकेगा। मेरे मित्र, वह करता और आप उद्धार से वंचित नहीं होते हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाप टिस मारने वाला घाव देता है जिसकी चुभन को सहना पड़ता है। अब अध्याय 13 में दाऊद ने अपना पाप स्वीकार किया। परमेश्वर ने उससे कहा था कि उसके पाप के कारण वैरी परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। वह उसे मारेगा तो नहीं, परंतु वह बचकर भी नहीं जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमें त्याग नहीं देता है, परंतु मुर्गियां घर आकर ही सोती है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि दाऊद की पुत्री का उसके पुत्र के द्वारा बलात्कार होता है। आइए हम पढ़ें दूसरा शामिल की पुस्तक, उसके 13 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, इसके बाद तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। ध्यान दीजिए, यद्यपि अबशालोम और तामार के माता पिता एक ही थे, परंतु वह अबशालोम की सौतेली बहन थी। दाऊद उनका पिता था, परंतु माताएं अलग अलग थी। तब हम आगे देखते हैं दूसरा शामुएल 13 अध्याय उसके 2-4 पद में लिखा है, और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन के योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था, और वह बड़ा चतुर था, और उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे ना बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूं। मित्रों, ध्यान दीजिए, अम्नोन ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह तामार से इतना अधिक प्रेम करता था कि उसकी भूख ही मर गई थी, और उसका मित्र इन सारी बातों को देख रहा था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है। परंतु समस्या तो यह थी कि तामार अबशालोम की बहन थी और अम्नोन अबशालोम से डरता था। दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसके 5-7 पद में हम आगे पढ़ते हैं, योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने को आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। और अम्नोन लेटकर बीमार बना, और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। और दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह कहला भेजा कि अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। मेरे मित्रों, अगले कुछ पदों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें दुख भरी कहानी है। अम्नोन ने तामार के साथ दुष्कर्म किया और वह उससे घृणा करने लगा। हम आगे पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहां तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। यहां पर ध्यान दीजिए कि यह भयानक काम दाऊद के घर में हुआ। उसकी मर्यादा भंग करके अम्नोन ने उसे त्याग दिया। मेरे मित्रों, दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसके 19 पद में आगे लिखा है, तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। तामार को अम्नोन ने बाहर धकेल दिया था और अब वह सिर पर राख डालकर रो रही थी। आगे लिखा है दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसके 20-21 पद में, उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुंझला उठा। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद क्रोधित तो था परंतु चुप रहा। दाऊद धर्मशास्त्र में व्यक्त अनेक पिताओं के समान संतान की बुराई पर पर्दा डालने वाला पिता था, जिसने बिगड़ी संतानों को पाला पोसा था, और ऐसा बार बार हुआ। मेरे मित्रों, इसका आरंभ परमेश्वर के महायाजक एली से हुआ था। उसके पुत्र चरित्रहीन ही नहीं भक्तिहीन भी थे और धार्मिक ठगी भी थे। तब आता है शमूएल। यद्यपि वह एली के पुत्रों के साथ में बड़ा हुआ था और हम सोचेंगे कि वह अधिक अनुशासन रखने वाला पिता होगा और अपनी संतान पर अधिक नियंत्रण एवं अधिकार जताएगा, परंतु उसके पुत्र भी अनिष्ट एवं भ्रष्ट थे। अब दाऊद जो शमूएल और उसके पुत्रों को जानता था, तो आप सोचेंगे कि वह अपने पुत्रों का पालन पोषण अधिक शक्ति के साथ में या निष्ठुरता या कठोरता के साथ में करेगा, परंतु उसने भी ऐसा नहीं किया। वह संतान के दोषों को अनदेखा करता था। तामार के साथ अम्नोन के कुकर्म से वह रुष्ट था, परंतु दाऊद ने उन पुत्रों के समक्ष कैसा उदाहरण रखा था। मेरे मित्रों, आप जानते ही हैं कि मुर्गियां सोने के लिए घर आ जाती हैं। आप संभवतः सोचेंगे कि मैं एक तरफा बातें कर रहा हूं, क्योंकि मेरे विचार पुराने हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मसीह परिवारों में मुख्य समस्या है कि माता पिता के आदर्श जीवन एवं अनुशासन में कमी है, और आपका पुत्र शैतानी करता है तो उसे समझाने में समय न गंवाएं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। उसके सामने आदर्श जीवन जिए और उसे अनुशासित करने में विलंब न करें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वह हाथों से निकल जाएगा। मेरे मित्रों, दाऊद की दूसरी कमी यह थी कि उसकी अनेक पत्नियां और अनेक संतान थे। राजा के असंख्य उत्तरदायित्व के उपरांत आपके विचार में अपनी संतान के लालन पालन में वह कितना समय लगा पाता होगा। हम सेवकों के साथ समस्या यही होती है कि हम अपने काम में व्यस्त होने के कारण अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें मसीही सेवा के बहाने उन्हें अर्थात परिवार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं यह अंगीकार करता हूं कि यदि मुझे जीवन में लौटने का अवसर मिले तो मैं एक काम और करूंगा, जो है कि अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करूं। मेरे मित्रों, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम परिवार के साथ समय देते हैं तो परिवार में वो आनंद, वो प्रेम बनता है जो परमेश्वर के निकटता में रहकर सेवा में आनंद भी देता है। अब मैं इतना अधिक व्यस्त नहीं हूं, फिर भी मुझे समय देने में दिक्कत होती है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही माता पिता को यह बात समझ लेना है कि उन्हें अपने बच्चों को प्रशिक्षण में समय देना है। आप यह न सोचे कि आप एक छोटे स्वर्गदूत का पालन पोषण कर रहे हैं। कुछ माता पिताओं का सोचना है कि यदि वे अपने बच्चे की ताड़ना करेंगे तो बच्चा बिखर जाएगा। हम बाइबल के नीति वचन की पुस्तक उसके 23 अध्याय और उसके 13 पद में पढ़ते हैं, लिखा है कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। जी हाँ, दाऊद ने अम्नोन के अपराध को अनदेखा किया, और इसका परिणाम क्या हुआ, हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, और अबशलोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबशलोम उससे घृणा रखता था। मेरे मित्रों, यह दाऊद का परिवार है, यह दाऊद का पारिवारिक जीवन है। वह पाप करके बच नहीं पाया। परमेश्वर कहता है कि हम भी पाप करके बच नहीं पाएंगे। अबशलोम समय की प्रतीक्षा में है कि अम्नोन से बदला कब ले, और वह दिन भी आएगा। हम अबशलोम द्वारा अम्नोन की हत्या के बारे में देखते हैं। मैं इस पर अधिक समय नहीं लगाना चाहूंगा, परंतु वह दिन आया जब अबशलोम ने अम्नोन की हत्या कर दी, जिसके लिए अबशलोम को 2 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़ा। उसने राजा के सब पुत्रों को भेड़ के ऊन कतरने के समय भोज पर आमंत्रित किया, क्योंकि अबशलोम ने अब तक बदला लेने की कोई मंशा प्रकट नहीं की थी। दाऊद ने अम्नोन को भोज में जाने दिया। तब क्या हुआ, आगे देखते हैं। दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, और अबशलोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सावधान रहो, और जब अम्नोन दाखमधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूं? हियाव बांधकर पुरुषार्थ करना। मेरे मित्रों, यहां पर अब देखिए कि जब अम्नोन पीकर मुग्ध हो गया, नशे में आ गया, तब अबशलोम ने उसे मरवा डाला। पहले तो दाऊद को यह संदेश मिला कि उसके सब पुत्र मारे गए हैं, परंतु योनादाब ने उसे बताया कि केवल अम्नोन मारा गया है। हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसके 33 से 35 पद में लिखा हुआ है, इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मर गया है। इतने में अबशलोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख, राजकुमार तो आ गए हैं, जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि षड्यंत्रकारी अबशलोम था और वह भाग खड़ा हुआ है। हम आगे पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसके 36 और 37 पद में। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत विलक विलक कर रोने लगा। अबशलोम तो भागकर गशूर के राजा अम्मीहूर के पुत्र तलमय के पास गया और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। मेरे मित्रों, अबशलोम की माता गशूर के राजा की पुत्री थी, अतः अबशलोम ने भागकर उसकी शरण ली। मित्रों, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि दाऊद ने इस परदेशी स्त्री से विवाह करके भूल की थी। याद रखें कि उसने यह विवाह उस समय किया था जब उसका विश्वास दुर्बल हो गया था और वह इसराइल त्याग कर पलिस्तियों के देश में चला गया था। इस स्त्री से दाऊद की दो अति सुंदर संतान उत्पन्न हुई थी, अबशलोम और तामार। स्पष्ट है कि दाऊद इस उदंड बालक को अनुशासन में नहीं रख पाया था क्योंकि उसकी माता अन्य जाति अर्थात बद्दू थी। एक प्रकार से देखा जाए तो अबशलोम का कुकर्म न्याय सम्मत हुआ क्योंकि दाऊद ने अम्नोन के अपराध पर कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक 13 अध्याय उसके 38 और 39 पद में लिखा हुआ है, जब अबशलोम भागकर गशूर को गया तब वहां 3 वर्ष तक रहा और दाऊद के मन में अबशलोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही क्योंकि अम्नोन जो मर गया था इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। मेरे मित्रों, अम्नोन की हत्या करने के बाद अबशलोम वहां से भाग गया। दाऊद उसे लौटा लाना चाहता था परंतु वह नहीं आया। दाऊद बस उसके लिए विलाप ही करता रहा। मेरे विचार में अन्य राजकुमारों की तुलना में अबशलोम में दाऊद से अधिक गुण थे और मेरे विचार में यह भी है कि दाऊद अबशलोम को ही अपने बाद राजा बनाना चाहता था। यह महत्वाकांक्षा अबशलोम के मन में भी थी जैसा हम आगे देखेंगे। दाऊद अबशलोम को लौट आने की अनुमति देता है। मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक उसके 14 अध्याय और 1-3 पद में लिखा हुआ है, और सरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया और राजा का मन अबशलोम की ओर लगा है, इसलिए योआब ने तको नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उससे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मुए के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना और योआब ने उसकी जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। मेरे मित्रों, योआब तकोवा के परिक्षेत्र में बड़ा हुआ था और संभवतः उस स्त्री को वर्षों से भी जानता था। तो आगे क्या हुआ आइए देखें। दूसरा शमूएल 14 अध्याय उसके 4-7 पद में लिखा है, जब वह तकोइन राजा से बातें करने लगी तब मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दुहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया और मैं विधवा हो गई और तेरी दासी के 2 बेटे थे और उन दोनों ने मैदान में मारपीट की और उनको छुड़ाने वाला कोई न था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। और यह सुन सब कुल के लोग तेरी दासी के विरोध उठकर यह कहते हैं कि जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के पलटे में उसको प्राण दंड दे और बारिश को भी नाश करें। इस तरह हुए मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि योआब ने उस स्त्री को राजा की भावनाओं से खिलवाड़ करने को कहा। उसने अपनी दुखद कहानी सुनाई। जिस प्रकार दाऊद छल का प्रयोग करता था उसी प्रकार अब वह भी छल किया जा रहा है। दूसरा शमूएल 14 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला नाश करने ना पाए और मेरे बेटे का नाश ना होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन के शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद उसके काल्पनिक पुत्र को क्षमादान देता है। इसके बाद वह अपनी कहानी के प्रसंग में दाऊद और अबशलोम को ले आती है। हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 14 अध्याय के 13 पद में लिखा है, उसने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो यह वचन कहा है इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि तकोआ की उस विधवा ने दाऊद को अपने काल्पनिक न्यायों का स्थान दिया। न्याय उसके जीवित पुत्र के साथ जो कर रहे थे वह दाऊद अबशलोम को छोड़ देने के द्वारा इसराइल परमेश्वर की प्रजा के साथ कर रहा था। वह विधवा माता के रूप में इसराइल का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वह संपूर्ण इसराइल की ओर से कहने का दावा कर रही थी और संभवतः उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। अबशलोम जानता था और वह प्रिय था और उनकी दृष्टि में अम्नोन को सही दंड मिला था। मेरे मित्र, इस घटना का निष्कर्ष यह निकला कि अंततः दाऊद को ना मानते हुए भी अबशलोम को लौट आने की अनुमति देनी पड़ी। हम दूसरा शमूएल 14 अध्याय उसके 21 से 24 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी है, तू जाकर अबशलोम जवान को लौटा ला। तब युवाब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया और युवाब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। और युवाब उठकर गशूर को गया और अबशलोम को यरूशलेम ले आया। तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन ना पाए। तब अबशलोम अपने घर जा रहा और राजा का दर्शन ना पाया। यहां पर ध्यान दें, यह दुर्भाग्य ही था कि दाऊद अपने पुत्र को देखना नहीं चाहता था। इस कारण अबशलोम के विद्रोह में भूमिका तैयार हुई, जैसा हम 15 अध्याय में देखेंगे। अबशलोम बुरा तो था, परंतु वह एक प्रवीण राजनीतिज्ञ था। अगले अध्याय में हम इस बात को भी देखेंगे। युवाब के खेत में आग लगाने के विषय में, और युवाब स्वयं उसके पास आया, और अबशलोम के व्यक्तित्व का और एक प्रदर्शन को हम देखेंगे। दूसरा शमूएल 14 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, अबशलोम ने युवाब से कहा, मैंने तो तेरे पास यह कहला भेजा था कि यहाँ आना, कि मैं तुझे राजा के पास यह कहने को भेजूं कि मैं गशूर से क्यों आया। मैं अब तक वहां रहता तो अच्छा होता, इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदि मैं दोषी हूं तो वह मुझे मार डाले। तो युवाब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई और राजा ने अबशलोम को बुलवाया और वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की और राजा ने अबशलोम को चूमा। मेरे प्रिय मित्रों, अबशलोम के इस प्रतिक्रिया ने युवाब को बाध्य किया कि वह उसके पिता को मेल करने पर सहमत करे। यद्यपि दाऊद का चुम्बन पूर्ण मेल और अबशलोम का राजपुत्र का स्थान लौटाने का चिन्ह था और वह संकोच से पूर्ण था, मेरे मित्र, उसके मन में संपूर्ण समाधान एक पीड़ादायक था। परमेश्वर ने तो दाऊद को अनमने मन से क्षमा नहीं किया था। परमेश्वर ने यह तो नहीं कहा था, मैं तुझे क्षमा तो करता हूं, परंतु हमारी सहभागिता अब न रहेगी, मैं तुझे उद्धार का आनंद नहीं लौटाऊंगा। परमेश्वर क्षमा करता है तो पूरी तरह से क्षमा करता है। आपको और मुझे उसने कहा है, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 32 पद में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे मित्रों, क्या परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है? जी हाँ, हम दूसरों को कैसे क्षमा करें? ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है और वह हमारे अपराध क्षमा करता है। आवश्यक था कि दाऊद अबशलोम को क्षमा करे, वह विद्रोह की भूमिका तैयार कर रहा था। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। गलतियों की पत्री अध्याय 6 उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस पद को सही रूप में नहीं पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि वहां लिखा है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो उसके सिर पर डंडा मारो। जी नहीं, हम क्षमा करने में दुचित्ते हैं। वरन कभी कभी तो बहुत ही अधिक गिर जाते हैं, बहुत ही प्रेम रहित हो जाते हैं, आलोचक बन जाते हैं। सच को उघाड़ने का समय होता है, परंतु क्षमा याचना पर तुरंत क्षमा करना चाहिए। मेरे मित्र, दाऊद ने अपने पुत्र को अपनी नाई क्षमा पाने से वंचित किया, वैसे जैसे परमेश्वर से उसने क्षमा पाई थी। वह पछताएगा और इस बात को हम आगे देखेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। मेरे मित्र, इस बात को हम देखते हैं दाऊद के पारिवारिक जीवन के द्वारा से कि यदि कोई पाप करता है तो परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता और वह चाहता है कि जिसे वह क्षमा करता है हम भी ऐसे लोगों को क्षमा करें। आज हम इस बात को अपने जीवन में देखें। क्या आज तक हमने अपने परिवार में, बच्चों में ऐसी कुछ बातों को देखा है जिसे अभी तक हमने नहीं सुधारा है या सुधारने का प्रयत्न नहीं किया है? जी हाँ, यदि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम उसे सुधारें। और इतना ही नहीं, हम अपने बच्चों को क्षमा करें और परिवार में परमेश्वर को स्थान दें ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे हरेक के जीवन में आ सके। आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सो संधिवादियों का। तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सो संधिवादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारे से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। खुशबू फैलाता है मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में।